मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, AFEIS के आज 7 दिसंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की शुरुआत में आप सबको एक सूचना देने के माध्यम से करना चाहूंगा, और सूचना यह है कि अब जो AFEIS है वो इंस्टाग्राम पर भी आ गया है। इसका जो इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है AFEIAS.official, और आप अब इसे भी फॉलो कर सकते हैं, राइट? मुख्य विषय के तहत आज मैं आप सबसे किसान आंदोलन से उठते सवाल, इस विषय पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। आज सोमवार है और सोमवार को नियमित तौर पर हम लोग कोरोना की बात करते हैं, COVID-19 की बात करते हैं, और जो मैं बात करता हूं उसका पर्पज आप जानते हैं, ताकि आपके मन में एक सकारात्मक भाव उत्पन्न हो सके। और मेरा पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे यह सकारात्मकता आपके अंदर बढ़ती ही चली जा रही होगी। आप देखिए कि स्वस्थ होने की दर बढ़कर के 94.37 हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा लोग स्वस्थ हो रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही आशा जगाने वाली बात है। वैक्सीन के बारे में आप लगातार खबरें पढ़ रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीन सफल होती जा रही हैं, ढेर सारी अब वैक्सीन बनने लगी हैं, बहुत सी कंपनियां अब इसमें आ गई हैं और उनके तीसरे चरण पर परीक्षण चल रहे हैं और उनमें सफलता भी मिलती चली जा रही है। कुछ देशों ने तो बिल्कुल अलाउ कर दिया है, हालांकि तीसरे परीक्षण के रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन विश्वास के कारण अलाउ कर दिया है कि ठीक है, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाए। भारत इसके लिए बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहा है, और परसों के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि ये जो दायित्व है ये एयरफोर्स को सौंपा जा रहा है कि एयरफोर्स जो वैक्सीन है वो जगह जगह पहुंचाने का काम करेगी, क्योंकि वो बहुत फास्ट तरीके से बहुत जल्दी पहुंचा देगी। आपको मालूम है कि जो वैक्सीन है इसकी एक समयावधि होती है जो काफ़ी कम होती है, और इसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना पड़ता है, अदरवाइज वैक्सीन खत्म हो जाती, बेकार हो जाती है। तो भारत भी जबरदस्त तैयारी में है, और ये लग रहा है स्थितियों को देखते हुए कि शायद नए साल की शुरुआत वैक्सीन से हो जाए। और जब वैक्सीन आएगी तो आपको मालूम है कि सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी लगाने में, ऐसे लोगों को दी जाएगी जो सबसे ज़्यादा इसके खतरे के सामने खड़े हैं। हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो हैं, और फिर जो ओल्ड एज के लोग हैं, इन सबसे वैक्सीन लगाने की शुरुआत की जाएगी। कुल मिलाकर के केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब एक सकारात्मक दृष्टिकोण धीरे धीरे विकसित हो रहा है। हालांकि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पूरी दुनिया के आंकड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब डेली जो आंकड़े मिल रहे हैं हमारे जो कोरोना से संक्रमित लोगों के, वो तो कल का ही मेरी समझ से लगभग 6.5 लाख के करीब पहुंचने को है। लेकिन जो मृत्यु दर है वो काफी नियंत्रित हो चुकी है, और वैक्सीन आने के बाद लग रहा है कि इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जाएगा। इसके माध्यम से दोस्तों, मैं जो आप सबसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि जो नकारात्मकता का दौर था वो खत्म होने के करीब है, और आपके मन से तो उसे खत्म हो ही जाना चाहिए। आगे जीवन है और वो बहुत लंबा जीवन है, तो आप सब जो जीवन में करना चाहते हैं और करके जो पाना चाहते हैं, हो सकता है कि इस बीच निराशा का भाव अंदर इतना घर कर गया हो कि कुछ करने का आपका मन नहीं कर रहा था, आप समय काट रहे थे या कुछ प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अगर आप समय काट रहे थे तो अब आप समय का उपयोग करने लगे, अब उसे काटिए मत। और यदि आप प्रतीक्षा कर रहे थे तो वो प्रतीक्षा खत्म हो चुकी है। आप वैक्सीन लगाने का इंतजार मत कीजिए, हाँ सावधानी जरूर रखिए, लेकिन आपको अपने काम में जुट जाना चाहिए। क्योंकि पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को देखकर जब मेरी लोगों से बातचीत होती है, उन्हें देखकर और स्टूडेंट्स के मेल्स पढ़ करके और दूसरे माध्यमों से, मेरा कुछ ऐसा इम्प्रेशन बना हुआ है कि स्टूडेंट सरेंडर कर चुके हैं कि नहीं नहीं अब तो कुछ भी नहीं होना है, अरे या फिर यह है कि ठीक है ये दौर गुजर जाए, जब तब देखेंगे, अभी तो क्या करें, पता नहीं कब स्कूल खुलेंगे, कब कॉलेज खुलेंगे, कब एग्जामिनेशन होंगे। और सच पूछे तो अब जो आने वाला समय है उसमें जीतेंगे वही लोग जिन्होंने इस समय का सदुपयोग कर लिया है, और मुझे यकीन है कि आप उनमें से एक होंगे। और अगर आप उनमें से एक नहीं हैं तब वक्त आ गया है कि आप उसमें शामिल हो जाइए, अब देरी करने का वक्त नहीं है। तो दोस्तों, एक कोविड के बारे में थोड़ी सी बातें थी। एक घटना है जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए खासकर उपयोगी हो सकती है जनरल स्टडीज़ की दृष्टि से, कि जो हमारा यूनेस्को है उसने मध्य प्रदेश के दो स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तहत शामिल किया है। ये दो स्थान है, एक ग्वालियर और दूसरा है ओरछा। ये दो स्थान ओरछा और ग्वालियर काफ़ी एक दूसरे के करीब हैं, जो दिल्ली के उधर आप यूं कह लीजिए कि सीमा दिल्ली के काफ़ी करीब पड़ते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यूनेस्को का एक प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम। अर्बन यानी कि जो शहर हैं, लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम। जब यूनेस्को को लगता है कि नहीं, ये जो शहर है, ये जो नगर है या ये जो स्थान है, ये मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ऐतिहासिक स्थान है या प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो फिर उसकी उसको धरोहर मानते हुए उसकी न केवल रक्षा ही करते हैं बल्कि उसका पूरा का पूरा एक प्रोग्राम तैयार करते हैं कि इसको कैसे विकसित किया जाए। तो अब यूनेस्को ने इन दोनों को शामिल कर लिया है। इसका मतलब है कि अब यूनेस्को की टीम आएगी और बाकायदे इसके लिए प्रोग्राम बनाएगी इन दोनों शहरों के लिए, और फिर उस प्रोग्राम के तहत फिर इन शहरों को विकसित किया जाएगा। तो बस ये थोड़ी सी जानकारी मुझे इसके बारे में देनी थी। फ्रेंड्स, आइए अब मैं मुख्य विषय पर ही सीधे बात करता हूँ, और वह किसान आंदोलन से उठते सवाल। आप देख रहे हैं कि लगातार जो किसान आंदोलन है वो बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली में 11वां-12वां दिन आंदोलन का हो चुका है। इस ठंड के दिनों में भी वो लोग डटे हुए हैं। अखबारों में काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इस आंदोलन को समर्थन भी मिलता चला जा रहा है। लगभग लगभग 20 राजनीतिक दलों ने इसको समर्थन दे दिया है। अलग अलग राज्यों के जो किसान संगठन हैं वे भी समर्थन दे रहे हैं। और यहाँ तक कि जो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट में जानबूझ करके कह रहा हूँ कि जो कनाडा है उसने कह दिया है कि नहीं, किसानों के हितों का ध्यान रखे भारत सरकार, यूएनओ ने भी कह दिया है, दूसरे देश भी कुछ इस तरह की बातें करने लगे हैं, और भारत ने यहाँ बकायदे इन सबको सतर्क किया है कि ये हमारे आंतरिक मामलों में आपका हस्तक्षेप है, भारत की संप्रभुता पर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो चूंकि ये आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है तो मुझे लगा कि इससे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के तहत कौन कौन से सवाल खड़े हो रहे हैं, किस किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, उनकी चर्चा मैं थोड़ी सी आपके सामने कर दूं, ताकि आपके लिए ये आंदोलन एक सिर्फ किसान आंदोलन न रह करके सिविल सर्विस की तैयारी करने का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाए और आपको समझ में आए कि नहीं नहीं, इसके तहत और भी दूसरी ढेर सारी बातें शामिल हैं, और यही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का चरित्र भी है। आपको ध्यान होगा कि फ्राइडे या थर्सडे की बात है, मैंने एक टॉपिक मुख्य विषय के तहत ही आप सबसे चर्चा की थी, और वो था कि अब जो हमारा जो विरोधी पक्ष है, जो विरोधी दल है, वो कौन है। नागरिक ही विरोधी दल है, क्योंकि अभी फिलहाल कोई उस तरह का विपक्ष है नहीं। आप यूं कह लीजिए कि उसी के कंटिन्यूएशन में मैं ये बात कह रहा हूं। अब आप देखिए कि कौन कौन से सवाल उठकर खड़े हो रहे हैं। अभी मैंने आप सबसे सॉवरेंटी की बात की, संप्रभुता। डेफिनेटली जो किसान आंदोलन है और भारत ने किसानों से संबंधित जो 3 बिल पारित किए हैं, हमारी संसद ने पारित किए हैं, तो यह हमारा आंतरिक मामला है। इसमें किसी भी बाहरी देश को, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ही क्यों ना हो, हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। हमारा अपना मामला है, हम उसे निपटाएंगे। हम उसे कैसे निपटाते हैं ये हमें देखना है। आप गाइड करने वाले कौन होते हैं, और देखिए आपकी व्यक्तिगत राय इस विषय पर चाहे जो भी हो, लेकिन सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के रूप में आपकी राय यही होनी चाहिए कि नहीं, ये हमारी संप्रभुता पर किया जाने वाला हस्तक्षेप है। जब विदेशी एजेंसियां अपनी बात रखती हैं तो उसके बहुत दूसरे कारण होते हैं। जैसे कनाडा का ही अगर आप बात लें तो कनाडा में बहुत से सिख हैं, और आप लोगों को शायद ध्यान होगा कि जो हमारे यहां जो खालिस्तान आंदोलन 1980 के आसपास चला था, उसके जो सूत्र थे वो कनाडा से थे। कनाडा में बहुत से सिख समुदाय के लोग रहते हैं, और वहां की सरकार अगर कुछ इस तरह की बात कर रही है तो सीधी सी बात है कि वो वहां रहने वाले सिख को खुश करना चाहती है ताकि उसके वोट वहां उन्हें मिल सके, तो वो अपनी राजनीति कर रही है। तो आपका जो स्टैंड होना चाहिए, ये बहुत क्लियर कट स्टैंड है फॉरेन पॉलिसी के तहत, कि संप्रभुता में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, आप देखिए कि उनके चार्टर में बकायदे ये होता है कि संप्रभुता पर हस्तक्षेप नहीं होगा, हम एक संप्रभु राष्ट्र है, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देखिए कि इस किसान बिल के साथ जो प्रॉब्लम अब जो दिखाई दे रही है वो ये है कि ये बहुत हड़बड़ी में पारित किया गया, इसकी चर्चा हम लोगों ने फ्राइडे को की थी। अब दो चीजें होती हैं, नो डाउट कि ये जो तीनों विधेयक पारित हुए हैं संवैधानिक दृष्टि से बिल्कुल सही है, संसद ने पारित किया है, लोकसभा में बहुमत था वहां से पारित हुआ है, राज्यसभा में बहुमत था वहां से पारित हुआ है, राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए हैं, संवैधानिक रूप से ये बिल बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम एक लोकतांत्रिक चरित्र की बात करते हैं तो फिर से एक सवाल खड़ा होता है, तो क्या लोकतांत्रिक चरित्र यह बिल, ये तीनों के तीनों बिल लिए हुए हैं? लोकतांत्रिक चरित्र का मतलब है कि संसद में क्या इस पर पर्याप्त रूप से बहस हुई, क्या जो विपक्षी दल थे जो दूसरे सदस्य अपने मत रख रहे थे क्या उनके मतों को इसमें शामिल किया गया, क्या उनका निराकरण करने की कोशिश की गई, क्या किसान संगठनों से इसके बारे में विस्तार के साथ बातचीत की गई, लोगों की राय जानी गई, ये लोकतांत्रिक चरित्र है। या कि फिर चलिए उस समय अगर ऐसा लग रहा था कि भाई इस पर बात नहीं बन पा रही है तो किसी एक्सपर्ट कमेटी को इसे सौंप दिया जाए, या चाहे वो हो सकता है कि वो एक्सपर्ट कमेटी विशेष जो दल समिति होगी वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से ही मिलकर के बनी हुई हो, ऐसा भी नहीं हुआ। तो अब हाल स्थिति यह होती है कि जब ये आंदोलन हो रहा है तो हमें यह सोचने के लिए बाध्य कर रहा है यह आंदोलन कि अगर सही मायने में इस तरह की सहमति ली गई होती इन तीनों के तीनों बिल के बारे में तो शायद यह आंदोलन यह रूप नहीं ले पाता। देखिए, विरोध करना एक अलग बात है, आंदोलन करना एक अलग बात है, और उसका बहुत व्यापक रूप ले लेना एक बहुत अलग बात है। तो यहां यह भी सवाल खड़ा होता है कि किसी भी विधेयक का संवैधानिक रूप से सही होना एक बात है, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से सही होना कहीं ना कहीं एक दूसरी बात भी होती है, ये दूसरा सवाल खड़ा होता है। तीसरा फिर सवाल खड़ा होता है फेडरल स्ट्रक्चर का। फेडरल स्ट्रक्चर का इस मायने में कि जो कृषि है अभी भी राज्य सूची का विषय है लेकिन केंद्र ने इस पर कानून बनाए, ठीक है, बिल्कुल वैधानिक रूप से ही कानून बनाए हैं, किसी कानून का उल्लंघन करके केंद्र ने कानून नहीं बनाए हैं, क्योंकि बकायदे संविधान में व्यवस्था है कि अगर हमारे राष्ट्रीय बाजार के चरित्र में कोई चीज बाधा बन रही है तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है, उसके तहत केंद्र सरकार ने कृषि पर आधारित कानून बना दिए। अब ये जो कृषि जो व्यवस्था हो रही है ये पूरे के पूरे राज्यों में हो रही है, खेती तो राज्य ही में ही होती है, वहां के लोग हैं, वहां के किसान हैं, और राज्यों ने अब इनका विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ राज्यों ने ऑलरेडी इस आंदोलन को अपना अपना समर्थन दिया है, और वो नो डाउट कि वो जो समर्थन है वो राजनीतिक दलों के चरित्र के आधार पर है, जहां केंद्र की सरकार है अगर उसी की राजनीतिक पार्टियां राज्यों में है तो उन्हें समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन राज्यों ने भले ही समर्थन न दिया हो, वहां के किसान जो संगठन है उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया है, तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर जो बिल्कुल राज्य सूची के विषय हैं, अगर केंद्र उस पर इतने इस तरह के कानून बना रहे जिससे कि राष्ट्रव्यापी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है, तो फिर हमारा जो संघात्मक स्वरूप है वो कैसे इंटैक्ट रहेगा, कैसे उसे बचा करके रखा जाए, या उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएं। सरकारी आयोग वगैरह जो बने थे वो इसी के बारे में सिफारिश करने के लिए बने थे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स तीन सवाल मैंने आप सबके सामने रखे हैं। जब भी इस आंदोलन के बारे में आप खबरें पढ़ेंगे या एडिटोरियल कमेंट्स पढ़ेंगे या आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उनमें देखिए कि इन तीनों के बारे में उसमें क्या बात कही गई है। तो मुझे लगता है कि इस आधार पर फिर ये जो आंदोलन चल रहा है इस टॉपिक पर आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: अंजलि सोनी, रीपा दहिया, दुष्यंत कुमार, यशस्वनी रेड्डी, रामिज, साहिल प्रताप, सिकंदरा राव उत्तर प्रदेश से, ज्योति और प्रिया सक्सेना, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।